बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिहि नस्तईन। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर अहमद। मेरी तरफ़ से सलाम कबूल कीजिए। मैं आपको अपने प्रोग्राम राह नजात में खैर मकदम अर्ज़ करता हूँ, और राह नजात में आज जो गुफ्तगू होगी वो है नमाज के मानवी असरात के सिलसिले में। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हर चीज़ का अपना एक असर होता है, और ख़ास कर जो खुदावंद करीम की तरफ से अहकाम सादर हुए हैं और इंसान को कमाल व सआदत तक पहुँचाने के लिए जो हुक्म खुदावंद करीम की तरफ से हम तक पहुँचाए, कोई भी हुक्म हो, चाहे वो मुस्तहब हुक्म ही क्यों ना हो, मुस्तहब एक अमल ही क्यों ना हो, उसका अपना एक असर है। उसके मुख्तलिफ असरात हो सकते हैं, इज्तिमाही असरात हो सकते हैं, सियासी, इसी तरह से सकाफती, हत्ता मईशती, मुख्तलिफ आसार के होने के बावजूद उसके अपने एक कुछ मानवी असरात भी होते हैं। आज हम देखेंगे कि नमाज अदा करने से और नमाज में जो मानवी असरात पाए जाते हैं वो क्या हैं। इस खूबसूरत से मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आली जनाब मुशाहिद आलम साहब के बला यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हसब मामूल प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन कराम, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आइए हमारा साथ दीजिए, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क़िबला, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके मौलाना मुशाहिद साहब, और आपको प्रोग्राम में खैर मकदम कहते हैं।
मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका।
क़िबला, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मानवी आसार नमाज के क्या हैं, इस पर हम आज कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। लेकिन सबसे पहले ये कि ख़ुद नमाज जो है बिज़ात ही, तो नमाज का क्या असर है कोई या नहीं, इससे पहले ये चीज़ हमारे लिए वाज़ह हो नाज़रीन के लिए, फिर उसके बाद आते हैं आसार की तरफ।
अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अपने अपने असरात हैं। बाज़ चीज़ें हैं जिनके मुसबत असरात हैं,
बिल्कुल,
और बाज़ चीज़ें हैं जिनके असरात
अच्छे
नहीं
नहीं
होते हैं।
होते हैं, बिल्कुल।
लेकिन नमाज चूँकि एक इबादत है, लिहाजा इस सिलसिले में हमें ज़रूर गहराई से जायज़ा लेना चाहिए कि इसके अपने असरात क्या हैं, और नमाज हमारे रूह के ऊपर, हमारी ज़िंदगी के ऊपर और हमारी शख्सियत के ऊपर क्या असर डालती है। अगर इस हवाले से हम नमाज की तारीफ़ और नमाज के सिलसिले में मुतालिया करते हैं, देखते हैं, तो बहुत सारी बातों का हमें पता चलता है। और उसमें से एक ये है कि इंसान इस ज़िंदगी में चाहता है कि उसकी ज़िंदगी मुतदिल हो,
सही,
एतदाल और तवाज़ुन उसके अंदर पैदा हो,
फायदा हो, बिल्कुल।
और वो दुनिया के मुख्तलिफ कामों में लगने की वजह से, मुख्तलिफ सोसाइटी में ज़िंदगी बसर करने की वजह से, मुख्तलिफ माहौल मिलने की वजह से वो तवाज़ुन खो बैठता है। उसकी फ़िक्र मुतवाज़िन नहीं होती, उसकी बातें मुतवाज़िन नहीं होती, उसके कल्ब और रूह में वो एतदाल नहीं पाया जाता। लिहाजा आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मुश्किलात और मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन कुरान मजीद इस हवाले से हमें रहनुमाई करता है और कहता है कि नमाज एक ऐसी चीज़ है को इंसान को एतदाल देती है, तवाज़ुन देती है, यानी उसकी रूह में जो तआदुल और तवाज़ुन होना चाहिए वो नमाज के ज़रिए हासिल होता है। जैसा कि इरशाद होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल इंसाना खुलिका हलूआ व इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ। इसके बाद वो मुस्तस्ना करता है, इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। ये इंसान बड़ा लालची है, जब इसे तकलीफ़ पहुंचती है तो ये फरियादी बन जाता है, और जब माल मिल जाता है तो फिर बुख़्ल इख्तियार करता है। अलावा उन नमाजियों के जो अपनी नमाजों की पाबंदी करने वाले हैं और जिनके अमवाल में एक मुकर्ररा हक मुय्यन है उन लोगों के लिए कि जो मोहताज हैं और मांगने वाले हैं, और जो लोग रोज़े क़यामत की तस्दीक करने वाले हैं और जो अपनी नमाजों का ख्याल रखते हैं। तो देखिए, इंसान की एक तस्वीर कुरान मजीद पेश करता है, इंसान लालची है, इंसान कंजूस है, इंसान जब तकलीफ़ उसको पहुंचती है तो वह गिड़गिड़ाता है, फरियाद करता है, लेकिन जब वो सहूलतों में बसर करता है, जब माल की फरावानी होती है, तब फिर वो खुदा को भूल जाता है। लेकिन ये सिफत उनकी है जो दुनियादार हैं। लेकिन जो नमाज पढ़ते हैं, जो अपनी नमाज का ख्याल रखते हैं और नमाज में इस्तेमरार जिनके यहाँ पाया जाता है, दवाम पाया जाता है, उनकी ये सिफत नहीं है। फिर इसी आयत को पेश नज़र रखते हुए हम नतीजा निकाल सकते
बिल्कुल
हैं। उनकी सिफत ये है कि वो तकलीफ उनको मिले तब भी वो राजी रहते हैं, माल मिले तो वो सखावत करते हैं,
करते हैं,
कंजूसी
नहीं करते हैं।
नहीं करते, और वो इस दुनिया में इस तरह से रहते हैं कि लोगों के लिए मुफीद। और ये है ज़िंदगी में तवाज़ुन, एतदाल, कि
बिल्कुल
इंसान इस चीज़ की तलाश में है, चाहता है। मसलन घर में कभी कभी गैर मुतवाज़िन हरकत की वजह से झगड़े पैदा हो जाते हैं,
बिल्कुल
लेकिन एक शख्स जो नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ खुद उसे जो है रहनुमाई करती है। लिहाजा एक असर ज़िंदगी में इंसान के क्या है कि इंसान की ज़िंदगी को मुतदिल बनाती है नमाज़, उसको तवाज़ुन अता करती है, इफरात व तफरीत से उसको दूर करती है। और दूसरा असर नमाज का ये है कि खुद कुरान मजीद कहता है अकीम सलात इन सलात तनहा अनिल फहशाए वल
वलमुनकर
मुनकर
वल
वला जिक्रुल्लाह अकबर।
सही
इरशाद होता है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, बेशक नमाज तुम्हें बुराइयों से, फहशा से और मुनकरात से रोकती है। और याद रखो कि याद इलाही सबसे बड़ी चीज़ है। तो दूसरा असर नमाज का क्या है, वो ये है
अच्छा
कि इस दुनिया में इंसान बुराइयों से बचता है। अगर नमाजी है तो फिर अपने को बचाता है, क्यों? बार बार जहन में उसके ख्याल आता है कि मैं बहरहाल नमाज पढ़ता हूँ, मैं अल्लाह के सामने जाता हूँ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो ये नहीं कर सकते, ये गलत फिक्र है, ये इसको नुकसान पहुँचाएगी। बल्कि इसे ये सोचना चाहिए कि हमें ज़िंदगी मिली है तो हम नमाज़ पढ़ करके अपने को ऐसी चीज़ों से बचा लें जो हमारे लिए कल हलाकत का
हलाकत
सबब
से
बन
बचा
सकती
सके।
है। लेकिन आदमी अपने सहूलत के लिए, अपनी आसानी के लिए कभी कभी उल्टा सोचने लगता है, गलत सोचने लगता है, इनहराफ की तरफ जाता है। हालांकि परवरदिगार चाहता है कि हमने जो इसे उम्र दी है, सेहत दी है, जवानी दी है, इसको ये इस्तेमाल करे और इस्तेमाल करने के बाद हमसे इनाम व इकराम ले, मुझसे वो हदिया ले और जायज़ा ले और इकराम और इनाम ले। वो ये नहीं चाहता कि इंसान इस दुनिया में अपने फिक्रों में महो होने के बाद एक गलत रास्ते पर चला जाए।
सही सही
लिहाजा बता दिया गया कि अगर तुम नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हें ये नमाज़ खुद ब खुद बुराइयों से
रोकेगी।
दूर करेगी और रोकेगी।
ये मसला होता है, देखने में आता है कि इंसान हर चीज़ में माहौ है, जो हर चीज़ की तरफ मुतवज्जह है, सिर्फ एक ज़ात है जिसकी तरफ मुतवज्जह नहीं, वो है खुदा। लिहाजा इसी वजह से वो ज़्यादा बुराइयों की तरफ रागिब होता है और उनमें यानी बुराइयों में ही चला जाता है। तो अगर वाकई मानों में जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि अगर नमाज सही मानों में वो पढ़ें और नमाज की तरफ मुतवज्जा हो, तो कभी भी वो बुराई की तरफ कदम नहीं उठाएगा। अच्छा
हमारे यहाँ हदीस है, यानी हमारे अम्मा ने इस आयत की वजाहत में ये बात कही है कि अगर कोई नमाज़ पढ़ता है और वो देखना चाहता है उसकी नमाज़ कितनी कबूल हुई,
कबूल हो
तो ये देखे कितना बुराइयों से बचता है
बचता
वो।
है, बहुत
जितना
अहम
बुराइयों से बच रहा है गोया उतनी ही मकदार में उसकी नमाज़ भी
कबूल
कबूल
हो।
हो रही है। अब बकिया के लिए उसे और आमादगी और तैयारी करना चाहिए ताकि वो बुराइयों से मुकम्मल तरीके से बच सके। ये सोचना गलत है कि मैं तो बच नहीं पाता, मैं बुराइयों से अपने को रोक नहीं पाता।
बिल्कुल आम एक तसव्वुर सा पैदा हुआ है बाज़ अफराद के दरमियान ये, कि हम तो बच नहीं पाते, अब नमाज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है,
ये
चूँकि
तसव्वुर जो है इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। ऐसा बहुत होता है ज़िंदगी में, और जो बुलंद हिम्मत होते हैं वो एक मर्तबा एक काम की शुरुआत करते हैं और नाकाम हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी मैं नाकाम हो गया हूँ लेकिन मैं आइंदा फिर करके, लिहाजा वो अंजाम देता है और उसे उसमें कामयाबी मिलती है। यही हाल मानवियात का है। लिहाजा हमारे आइम्मा ने हमको रहनुमाई की है मानवियात में कि जो चीज़ तुमको तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है, वाजिब करार दी गई है, पहले तुम उसको अंजाम दो, मुस्तहबात के ऊपर लगने की ज़रूरत
नहीं।
नहीं
अच्छा
है।
यहाँ पे ये चीज़, ये जो हम कह रहे हैं कि मानवी असर है इसका, इसकी ज़रा आप वजाहत फरमाएं ताकि नाज़रीन के लिए भी ये वाज़ह हो।
यानी मानवीय असर का मतलब ये है यानी इंसान की रूह को कुव्वत और इस्तेहकाम मिलता है।
सही
ये देखिए जितने काम इंसान दुनिया में अंजाम देता है वो وہ اپنے ارادے کی بنیاد پر کرتا ہے. ارادے کا تعلق انسان کی روح سے ہے, بدن سے نہیں ہے. جتنا جتنا ارادہ مضبوط ہوتا جائے گا
صحیح.
اتنا ہی زیادہ وہ انسان اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا جائے
تو
گا.
اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ مانوی اثر جو ہے وہ بنیاد ہے دوسرے اثرات کے لیے.
بالکل. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے, نماز 5 وقت واجب ہے.
بالکل
ٹھیک ہے. اب انسان عزم کرتا ہے کس کے لیے؟ نماز صبح کے لیے. تو اب جب اس نے ارادہ کیا, پکا ارادہ کر لیا, تو ظاہر بات ہے نماز پڑھے گا. یہی نماز اب ہم کو سکھاتی ہے کہ ابھی تم نے نماز پڑھا ہے, اس دنیا کے لیے تم کو کچھ کرنا ہوگا, کچھ کام ضروری ہے. لہذا اب نماز کے لیے تم نے ارادہ کیا ہے, تو اب دنیا کے لیے بھی ارادہ کرو. اب وہ دنیا کے لیے بھی عزم کرتا ہے,
بالکل.
دنیا بھی کماتا ہے. کیونکہ قرآن مجید اور مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ صرف تم عبادتوں میں لگ جاؤ. یہ تو غلط تصور لوگوں کا پیدا ہو گیا
بالکل
ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہم کو صرف کہتا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, یا مثلا عبادتیں انجام دو. نہیں, اسلام کہتا ہے میں تمہاری پوری زندگی کو عبادت بنانا چاہتا ہوں,
صحیح.
اور نماز ایک ذریعہ ہے جو تم کو عبادت کی طرف لے کے آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز تمہیں ارادہ سکھاتی ہے, نماز تمہیں پاکیزگی سکھاتی ہے, نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے, نماز تمہیں خیرات کرنا سکھاتی ہے,
سکھاتی ہے.
نماز تمہیں اللہ سے ہٹ کر کے دوسروں کے دروازے پہ جھکنے سے روکتی ہے, نماز تمہیں صلح اور سلامتی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ آخر میں جو
جی,
تمہیں صلح اور سلامتی
سلامتی
دیتی
سلامتی.
ہے. تو یہ ساری خوبیاں جب نماز میں ہیں, تو ایک بندہ مومن نماز پڑھنے کے بعد کیسے برا بن کے رہ سکتا ہے؟ لہذا ہمیں ماننا پڑے گا ایک یہیں سے یہ بھی چیز, کہ آج دنیا میں جو لوگ داڑھی رکھ کر کے اپنے کو مسلمان کہہ کے دوسروں کو قتل کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, اور خود اپنے کو مسلمان کہتے
مسلمان
ہیں,
کہتے
حقیقی معنوں میں مسلمان
نہیں ہے.
کہنے کے قابل
بالکل
نہیں ہیں. اس لیے کہ اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو نماز پڑھنا چاہیے, اور اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز برائیوں سے روکتی ہے. اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ایک مسلمان بے گناہ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے,
وہ تو نماز پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. نہیں
لہذا
ہو سکتا.
ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا سب سے پہلے نماز کا صحیح تصور سمجھے. ایک نماز کی خوبی ہے کہ نماز میں جتنی باتیں ہم کہتے ہیں وہ سب معرفت ہم کو سکھاتی
اصل
ہے.
میں مجھے لگتا ہے کہ یعنی اگر وہ معرفت انسان کے اندر پیدا ہو اور وہ یہ سمجھ سکے اور اس کو درک کر سکے میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کس سے گفتگو کر رہا ہوں اور کیا چیز میں کہہ رہا ہوں, کس چیز کی میں طلب کر رہا ہوں, تو حقیقی وہ اثر جو ہے نماز کا وہ بھی خود بخود آ ہی جائے گا.
قطعا ایسا ہی ہے, کیونکہ سورہ ہم جو انسان پڑھتا ہے اس میں کیا کہتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں راہ راست دکھا دے,
بالکل
ہمیں راہ راست پہ لگا دے. تو یہ دعا کیوں پروردگار اس میں سورہ حمد میں ہم کو سکھانا چاہتے ہیں, اور بار بار سورہ حمد کو ہم نماز میں
تکرار کرتے ہیں؟
اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو راستہ سیدھا ہے اس کے اوپر بندہ اپنے کو لگا دے, اور جو راستے غلط ہیں اس سے اپنے کو جدا کر دے. اور کب سیدھے راستے پہ لگ سکتا ہے آدمی؟ جب معلومات حاصل کرے,
بالکل
علم حاصل کرے. یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ لوگ کہ جو نماز کی طرف نہیں آتے یا نماز پڑھ کے بھی برائیاں انجام دیتے ہیں, غلط کام انجام دیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی صحیح علم اس کو حاصل نہیں ہوا, صحیح معرفت اس کو حاصل نہیں ہوئی. اس لیے کہ پہلی چیز علم اور معرفت ہے. جب تک علم نہیں ہوگا, معرفت نہیں ہوگی, صحیح شناخت نہیں ہوگی, صحیح پہچان نہیں ہوگی, ہم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہو کر کے کیسے عبادت کر سکتے ہیں؟ جس کی ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم اسے پہچانیں,
پہچانے.
اور وہ ان تمام چیزوں سے پہلے ایک مسلمان سے کیا کہتا ہے پیغمبر کی زبانی, طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمہ. یعنی ساری چیزوں سے پہلے ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے, واجب ہے کہ پہلے علم حاصل کرے, تاکہ زندگی میں انحرافات سے, خرافات سے, رسومات سے اور گمراہیوں سے اپنے کو بچا سکے. ایسا آدمی جب علم حاصل کرنے کے بعد, معرفت حاصل کرنے کے بعد اللہ کی بندگی کرتا ہے, تو اس کے لیے حدیث کہتی ہے کہ جاہل 70 سال عبادت کرتا ہے, لیکن اگر ایک پڑھا لکھا اللہ کی معرفت رکھنے والا سو بھی جائے تو اس کی نیند اس کی 70 سال کی عبادت سے یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو آج دنیا میں بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے پاس इस्लाम के बारे में कोई इल्म नहीं
नहीं
पाया
पाया
जाता, उनके अंदर कोई मारिफत नहीं पाई जाती। ये उस जाहिल के मानिंद हैं कि जिसको एक चीज़ सिखा दी गई, बस वो उसको तकरार कर रहा
तकरार
है,
कर।
अंजाम दे रहा है, बिल्कुल एक मशीन की तरह से। या कंप्यूटर में कोई चीज़ फीड कर दी गई, अब जब भी आप बटन दबाएंगे तो वो चीज़ उसके सफ़े के
सब
ऊपर, स्क्रीन के ऊपर खुद ब खुद आ जाएगी, और जब आप खामोश कर देंगे खुद ब खुद चली जाएगी।
बिल्कुल
ये आदमी की सूरत में एक मशीन है कि जो इसको रटा दिया गया, बता दिया गया, ये अल्लाह की सही मारिफत नहीं रखता। अगर सही मारिफत रखता होता तो कतअन अपने को एक मुसलमान, एक मोमिन, बल्कि बाज़ जगह बेगुनाह बच्चे इनके खून से अपने को आलूदा ना
नहीं
करता।
करता।
लिहाजा हम आखिर में ये कहेंगे कि नमाज फहशा और मुनकरात से जो रोकती है, उसमें मुनकर मुनकर
मुनकर, अगर आप
तमाम
इजाज़त
बुराइयों को।
दें, अगर आप इजाज़त दें यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम आपसे वजाहत चाहेंगे इन सब चीज़ों की। नाज़रीन कराम, यहाँ पे वक्त हो चला है एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर खत्म। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है। आइए हमारा साथ दीजिए, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी किबला, यहाँ पे जो अहम सवाल अब पैदा होता है, जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया कि इंसान को नमाज जो है वो रोकती है फाहिशा और मुनकरात से, तो ये जो दो कलमे इसमें इस आयत करीमा में वारिद हुए, फाहिशा और मुनकर, इसकी ज़रा वजाहत फरमाएँ।
आयत में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुई है, इन्न सलात तनहा अल फहशा वल मुनकर,
बिल्कुल
यानी नमाज रोकने वाली है फहशा और मुनकर से। इसके सिलसिले में फ़ख्र राज़ी ने ज़ाहिरन तफसीर कबीर में ये बात लिखी है कि फहशा का ताल्लुक़ इंसान की शहवत से, यानी
सही,
वो गुनाह कि जिसका ताल्लुक़ सेक्स और जिनसियात से।
जिनसियात से।
नमाज में इतनी क़ुव्वत और सलाहियत है कि अगर नमाज को उसके आदाब और शरायत के साथ कोई अंजाम दे तो नमाज नमाजी को ज़िना से, जिनसी मसाइल और गुनाह से, और सेक्स से, और सेक्स से पैदा होने वाली बुराइयों से बचाती। आज यानी इस दुनिया का एक अलामिया और ट्रेजडी जो है वो ये है कि दुनिया जो है वो गिरफ्तार है। इतनी चीज़ें इस वक्त इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल के ज़रिए से, और इस मीडिया में जिससे सरोकार है लोगों का, ऐसी ऐसी चीज़ें दे दी गई हैं कि जिससे मुसलमान अपनी शख्सियत को खोना चाहता है। आज इसी ज़माने में कि जब ये बुराइयाँ हमला आवर हो रही हैं, हुजूम कर रही हैं मुसलमानों के ऊपर और इंसानों के ऊपर, और इंसानों के लिए ख़तरे की घंटी बजा रही हैं, नमाज इन बुराइयों से निकालने की पूरी सलाहियत और क़ुव्वत रखती है। क्योंकि नमाज इन जैसी जितनी बुराइयाँ हैं उससे इंसान को रोकती है।
शायद इसीलिए कहा गया है कि दूसरी आयत में कि वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह,
हसन तो बिल्कुल, यानी नमाज और रोज़ा वो दो अहम इबादत है कि परवरदगार ने कहा है कि तुम इससे इमदाद हासिल करो,
बिल्कुल
मदद हासिल करो। और मैं यहीं के ऊपर ये अर्ज़ कर दूं कि नमाज कितनी अहम इबादत है और इसके मानवी असरात ज़िंदगी में कितने हैं, कि मौलाए कायनात के बारे में ये बात मिलती है। आप फरमाते हैं कि जब भी मुझे कोई अहम ज़रूरत और काम लाहिक होता था
सही,
और अहम काम मुझे करना होता था तो मैं उससे पहले 2 रकत नमाज पढ़ता था और उसमें अल्लाह से तलब मदद करता था। यानी नमाज ये है कि
बिल्कुल
मौलाए कायनात नमाज पढ़ करके अपने मालिक की बारगाह में उससे मदद तलब करते हैं। तो यहाँ ये बात पता चल जाती है कि नमाज जहाँ जिनसी गुनाहों से रोकती है, वहीं बड़े बड़े काम
काम
अंजाम
अंजाम
देती
देती
है,
है।
वहीं हम इससे मदद हासिल कर सकते हैं। और इस पर हमारे आइम्मा ने अमल किया है, बल्कि जो नमाज इस्तखारा जिसको कहा जाता है हमारे यहाँ कि नमाज इस्तखारा, नमाज इस्तखारा का मतलब यही है। कोई भी काम हो, हम जा रहे हैं
बिल्कुल
मिसाल के तौर के ऊपर किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो इसमें क्या कमी है कि आदमी जो है वुजू करे اور صبح کی طرح سے بغیر اذان اور اقامت کے، کیونکہ
دو
نماز ہے مستحبی میں اذان اور اقامت جائز
نہیں ہے.
نہیں ہے، وہیں کے اوپر جہاں ہے موجود پاک و پاکیزہ جگہ کھڑا ہو، دو رکعت صبح کی طرح نماز پڑھ لے، اس نماز میں آخر میں دعا کرے، پروردگارہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں، واستعین بالصبر والصلاۃ، پروردگارہ ہم تیری نماز سے مدد چاہتے ہیں. لہذا ہمارے ائمہ کا عمل اس چیز کے اوپر تھا کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرنا چاہتے تھے تو وہ نماز پڑھتے تھے. بلکہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ عاشورہ کی شب ہمارے بابا نے یزیدیوں سے جو مہلت مانگی تھی اس میں یہ فرمایا تھا کہ خدا خوب جانتا ہے کہ مجھے اس کی نماز کتنی پسند ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کی آیات کی تلاوت مجھے کتنی محبوب ہے. یعنی یہ ہے نماز.
ایک جو اثر ہے یعنی جو آپ نے یہاں پہ اشارہ فرمایا فحشاں سے روکتی ہے نماز، صحیح. یعنی یہ ایک المیہ ہے آج کل کے انسان کا، آج کے دور میں جو انسان ہے کہ ہر طرف فحشاں میں گرا ہوا ہے. ایک ہجوم جو آپ نے اشارہ کیا کہ ہر حقیقی دنیا میں بھی اور مجازی دنیا جو ہے انٹرنیٹ ٹی وی
انٹرنیٹ
دوسری چیزیں اس میں بھی، تو ایک اہم عنصر جو ان کو نجات دے سکتا ہے اس فحشاں سے اس دنیا سے وہ ہے نماز. منکر پہ بھی،
اور منکر اس کے مقابلے میں یعنی تمام برائیاں، چاہے وہ آنکھوں سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ کان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ ہاتھ اور پیر کے ذریعے سے ہو، نماز کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ تمام برائیوں سے انسان کو روک سکتی ہے، بشرطے کہ نماز کے سلسلے میں صحیح
معرفت ہو،
اس کے آداب اور شرائط اس کو پتہ ہوں، اور وہ حضور قلب کے ساتھ نماز کو انجام دے. اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی نماز عموماً نہیں پڑھی جاتی.
بالکل.
اور اگر ایسی نماز پڑھی جاتی ہوتی تو یقیناً ہمیں اس کا نتیجہ بھی ملتا. اور ایسے بہت سے بزرگان اور بہت سے ایسے باتقویٰ لوگ گزرے ہیں جن کی ہسٹری ہے، جن کی زندگی ہے، اور جن کے بارے میں لوگ جانتے ہیں کہ وہ اسی نماز کے ذریعے سے بہت بلندیوں تک پہنچے. کیونکہ نماز کی ایک باطنی صورت ہے، ایک روحانی صورت ہے، ایک اس کا چہرہ ہے. اور وہ چہرہ کیا ہے کہ جب کوئی آداب اور شرائط کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے اندر یہ کیپیسٹی اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ فحشاء سے اس کو روکتی ہے، برائیوں سے اس کو روکتی ہے، تو وہ بالکل نیک صفت بن جاتا ہے. جب نیک صفت بن جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب نورانیت پیدا ہو جاتی ہے تو حدیث میں ہے کہ وہ نور اس دنیا میں اس کی ہدایت کرتا ہے. لہذا اب اسے کوئی نہ گمراہ کر سکتا ہے، نہ برائیوں پہ لگا سکتا ہے، اور نہ کوئی مصیبت اس کے لیے مصیبت رہتی ہے، بلکہ مصیبتوں میں وہ بھی احساس کرتا ہے کہ میں خوشحالی میں ہوں، اور جب خوشی میں آتا ہے تب اللہ کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے.
یعنی یہ وہی راستہ ہے، اہدنا الصراط
المستقیم، یعنی نتیجہ ہے نماز کا گویا. لہذا یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری نمازیں یعنی مقبول نمازیں ہیں، ہماری نمازوں کے اندر وہ صلاحیت اور قوت پیدا ہو گئی ہے کہ جو ہمیں برائیوں سے روکے. اچھا، ادھر فحشاء کا کیوں ذکر کیا؟ اس کا مطلب یہ خاص گناہ ہے.
بالکل.
جو ہر زمانے میں رہا ہے
رہا
اور آج کے زمانے میں بڑھ چڑھ کے، قرآن مجید خاص طور سے پہلے اس کا ذکر کرتا ہے، پھر عمومی گناہ اور برائیوں کا تذکرہ کرتا ہے. یعنی ایک بندے مومن کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نماز کے اندر کیا خوبی ہے. میں یہاں سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج ہمیں اور جو گارجینس ہیں، پیرنٹس ہیں اور اولیاء ہیں، مربی ہیں، سرپرست یا اساتذہ ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ گھر میں ان کے بچے جو ہیں جب بڑے ہوں تو برائیوں میں پھنسنے نہ پائیں، گندگیوں میں وہ الجھنے نہ پائیں، تو انہیں چاہیے کہ بچپن ہی سے ان کو نماز
سکھائیں،
نماز کی تعلیم دیں.
بالکل.
اور یہ ہمارے چھٹے امام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اہل بیت اپنے بچوں کو 5 ہی سال سے نماز کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن تمہیں چاہیے کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو. یہاں تک کہ کہیں کے اوپر بچوں کو ہم نہیں مار سکتے، اسلام دیکھیے اسلام مارنے سے منع کرتا ہے، لیکن نماز کے سلسلے میں اتنی اہم چیز ہے، اتنی نیک چیز ہے، اتنی خوبصورت چیز ہے، اتنی حسین اور زیبا چیز ہے، اتنی جامع اور کمپلیٹ عبادت ہے کہ نماز کے سلسلے میں کہا اگر بچے نہ پڑھیں اور اس سلسلے میں وہ آناکانی کریں तो तुम उन्हें तंबीह भी कर सकते हो, हल्के से मार भी सकते हो, ताकि उन्हें एहसास हो कि कोई बड़ी चीज़ है जो हमसे छूट रही हो, हम अंजाम नहीं दे रहे हैं। तो ये इस्लाम है, वो तकरीबन हर चीज़ को बताने के लिए तैयार है। हमें चाहिए कि हम इबादत को इबादत के अंदाज़ से देखें,
देखें बिल्कुल
मज़हब की बातों को उसी अंदाज़ से देखें जैसे हमें इस्लाम बताना चाहता है, कुरान बताना चाहता है, और ख़ुसूसन सीरत आइम्मा अलैहिस्सलाम, आइम्मा की जो हम पाकीज़ा सीरत है, किरदार है, उसमें जो तस्वीर है इबादत की, नमाज की, कि ये नमाज भी पढ़ते थे, दुनिया का कारोबार भी
बराबर
करते
करते
थे,
थे बिल्कुल
नमाज भी पढ़ते थे, दूसरों का हक भी अदा करते थे। ऐसा ना हो कि हम सब को छोड़ करके नमाज में लग जाएं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि
सब
सारे
चीज
काम हो मगर
नमाज ना हो। एक बहुत अहम मुश्किल जो है हमारे माशरे में यही है कि हम जो तसव्वुर जो है हमारे पास नमाज का, वो हमारा अपना तसव्वुर है। जो इस्लाम ने पेश किया, जिस दस्तूर की इस्लाम ने रहनुमाई की है, वो तसव्वुर नहीं है। लिहाजा हर किसी की अपनी एक नमाज है, अपनी एक मस्जिद है जिसको वो चलाना चाहता है। लिहाजा इसी वजह से उसके असरात भी नहीं देख रहे हैं माशरे में उस फर्द के ऊपर। और अगर देखा जाए, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और बहुत ही अहम नुक्ता है ये, फाहिशा का पहले तذکرہ किया गया है, चूँकि हर ज़माने में आम है ये फाहिशा, और उसके बाद मुनकरात का। तो एक ऐसा फार्मूला है जो अल्लाह ताला ने पेश किया है एक इंसान और एक इंसानी माशरे को सुधारने के लिए। अगर इसको लागू किया जाए, नाफिज किया जाए, और सही मानों में इसके आदाब पे अमल हो, तो उसका नतीजा भी हम देख सकते हैं, और माशरे की सूरत में, अच्छे अफराद की सूरत में। और मुझे लगता है कि नमाज के साथ साथ उसकी जमात का भी इसी तरह से असर होना चाहिए,
जी हाँ, यानी खुद फुरादा नमाज के अपने असरात
असरात
हैं
है, और फिर
और जमात के अपने असरात हैं,
जमात या नमाज जुमा जो हम पढ़ते हैं
नमाज जुमा,
मुसलमान,
नमाज ईदैन,
ईदेन
इन सब चीज़ों के अपने अपने असरात हैं
बिल्कुल
और बहुत अहम असर है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए, यहाँ के ऊपर अगर हम कहें, इशारा करना चाहें सिर्फ, तो जमात का एक असर ये है कि आदमी इन्फरादियत से बाहर आ
बाहर
जाता
आ
है
जाता है और
और
इज्तमाई
लोगों से
शऊर
मिलने के बाद अपने गम को बांटता है और
बांटता
गम
है,
गलत करता है गोया,
बिल्कुल एक
और
दूसरे का
ये
ताऊन, एक दूसरे का
ताऊन
बिल्कुल
हासिल करता है, खबरों से आशना होता है, और
बिल्कुल
उसके बाद मुलाकात के बाद एक निशात, एक खुशहाली हासिल होती है। तो दुनिया में जो तन्हाइयां हैं, जो उसके अंदर मसाइल और मुश्किलात हैं, वो सब हल करने
हल
की
कर
उसके अंदर क़ुव्वत और
कुवत
ताकत पैदा
पैदा
होती
कर।
है।
बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। मैंने तो काफ़ी इस्तफादा किया आपसे, उम्मीद है कि नाज़रीन ने भी इस्तफादा किया होगा। नाज़रीन कराम, उम्मीद है कि आपको भी जनाब मुशाहिद आलम साहब की गुफ्तगू पसंद आई होगी। बहुत ही अहम मौजू और अहम उनवान है कि इस पे वाकन इसकी तरफ हम मुतवज्जा रहे कि इसके असरात जो है, अगर मानवी असरात ही ले हम, लेकिन वो हमारे इज्तिमाई, सियासी और दूसरे सारी ज़िंदगी के जो आबाद और पहलू हैं उस पर भी असरानंदाज होते हैं। उम्मीद है कि हम सबको खुदावंद करीम हकीकी नमाज गुजारों में शुमार करें। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।